ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राज्य यात्रा पर आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंची। वे न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेन सिंडी किरो के निमंत्रण पर वहां गई हैं। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू गवर्नर जनरल किरो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू एक शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगी। उनके इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे। राष्ट्रपति न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। उन्होंने फिजी के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। सरकार सूचना क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना बना रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार ने 65 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों में से 57 केंद्र टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 54 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। के कैलाश नाथन ने आज पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद की शपथ ली। राजनिवास में आयोजित समारोह में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार ने उन्हें शपथ दिलाई। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने कहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई और बिम्स्टेक व्यापार मंच सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, नीति निर्माताओं और विचारकों, उद्योग और शिक्षा जगत, व्यापार संघों और व्यक्तिगत निवेशकों के महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों को एक ही मंच पर ला रहा है। नई दिल्ली में कल शिखर सम्मेलन में श्री मार्गरेटा ने कहा कि वे इस तथ्य से भी प्रोत्साहित हैं कि महिलाओं को व्यापार की मुख्य धारा मिलाना शिखर सम्मेलन की कार्यसूची का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो न केवल महिला केंद्रित है बल्कि महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने वाला भी है। ढाका में भारतीय उच्चायोग के गैर जरूरी कर्मचारी और उनके परिवार स्वैच्छिक रूप से वाणिज्यिक उड़ान से बांग्लादेश से भारत लौट आए हैं। सूत्रों ने बताया है कि भारतीय उच्चायोग में सभी राजनयिक मौजूद हैं और आयोग सामान्य कामकाज कर रहा है। बांग्लादेश में अशांति के बीच भारत अपने राजनयिकों के माध्यम से वहां भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में अपने वक्तव्य में कहा कि इस समय करीब 19,000 भारतीय नागरिक बांग्लादेश में हैं, जिनमें 9,000 विद्यार्थी हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को भी सतर्क रहने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों से लीबिया की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। लीबिया की वर्तमान स्थिति के आकलन के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। लीबिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सड़क मार्ग से दूसरे प्रांतों की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। इसका निर्णय कल ढाका में बंग भवन में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और छात्र आंदोलन के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की बैठक में लिया गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाल ही में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों के पानी में डूबने से हुई मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। इससे पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति भी गठित की थी। ये समिति घटना के कारणों की जांच कर जरूरी उपाय सुझाने के साथ नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी। ओलंपिक से भारत के लिए बुरी खबर आई है। महिला पहलवान विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए कुछ ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। विनेश फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन मुकाबले से पहले ही विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।